जय राधा माधव जय कुंज बिहारी राधा जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर यशोदानंदन जय गज जन रंजन जय यशोदानंदन जय गज जन रंजन जय यमुना किरा बन चारी जय कुंज बिहारी जय यमुना किरा बन चारी जय कुंज बिहारी राधा माधव जय कुंज बिहारी राधा जय राधा माधव जय कुंज बिहारी राधा नितय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय ओम विष्णुपाद परमहंस पैवराजकचार्य अष्टोत्तर श्री श्री मधेश डिवाइन ग्रेस अभयचरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय नित्य लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ दी होल वर्ल्ड जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय श्री श्री गौनताई की जय श्री श्री सीतारा राम लक्ष्मण हनुमान की जय। श्री श्री प्रहलाद नृसिंह देव की जय। श्री श्री यशोदा दामोदर की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमानाचार्य वृंद की जय। श्री गोवर्धन पूजा महामहोत्सव की जय। श्री गो पूजा महामहोत्सव की जय। श्री गो क्रीड़ा महामहोत्सव की जय। शिल रसिकानंद प्रभु आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जय। गौर प्रेमानंदी ऑल ग्लोरीस्ट सिंबल डिवोटीज ऑल ग्लोरीस्ट सिंबल डिवोटीज ऑल ग्लोरीस्ट सिंबल डिवोटीज ऑल ग्लोरीस्ट श्री गुरु एंड गौरांगा। हरे कृष्णा। तो आज पांच त्योहार हैं। कितने त्योहार हैं? पांच हैं। पांच त्योहार हैं, समय बहुत कम है। तो चार त्योहारों की चर्चा तो हम पहले करेंगे और एक जो मुख्य त्योहार है वो तो बहुत ही दिव्य है और उसके लिए जितना समय हो कम ही है। तो सबसे पहले तो हम विचार करेंगे बलि दैत्य राज पूजा। आज के दिन हमारे वैष्णव कैलेंडर में लिखा हुआ है बलि दैत्य राज की पूजा। तो हम लोग तो नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ विधि बताई गई है तो उसको हम केवल सुनेंगे। तो आज के दिन भगवान वामन देव ने बलि महाराज को कुछ वरदान दिए थे। आज के दिन भगवान वामन देव ने इंद्र को स्वर्ग का राज्य प्रदान किया था और बलि महाराज को स्वतल्लोक भेजा था। स्वतल्लोक में बलि महाराज रहेंगे और जितना समय इस मन्वंतर का बचा है रहेंगे। अगले मन्वंतर में उनका इंद्र का पद पहले से बुक कर दिया भगवान ने। आठवें मन्वंतर में बलि महाराज इंद्र ही बनेंगे, लेकिन अभी जब तक आठवां मन्वंतर शुरू नहीं होता है स्वतल्लोक में निवास करेंगे और असुरों के राजा हैं। असुरों के राजा बलि महाराज, ये बड़ी मुश्किल बात है। महाभागवत, एक तो भगवान को समर्पित भक्त और असुरों का राजा बने, बहुत मुश्किल है। असुर लोग शासन नहीं मानेंगे। तो भगवान ने क्या कहा था बलि महाराज को कि मेरा चक्र तुम्हारे साथ रहेगा और जिसने कुछ उल्टी बात करी तुरंत गला कट। तो ऐसा होना चाहिए ना, ऐसा होना चाहिए, ऐसी सुरक्षा। कोई बगावत करे, कोई विद्रोह करे, कोई विरोध करे, कुछ भी, तुरंत एक्शन, गला काट देगा चक्र। तो ये जो है मतलब बलि महाराज को, और बलि महाराज को जो है विंध्यावली उनकी पत्नी है उनके साथ में भगवान वामन देव ने जो है मतलब वरदान दिया था। तो आज कार्तिक महीने के प्रतिपद का जो है शुक्ल पक्ष का प्रतिपद है, यानी पहला दिन है। तो उनका चित्र बनाना चाहिए, पांच रंगों में चित्र बनाना चाहिए। प्रसन्न मुद्रा में बलि महाराज हैं और विंध्यावली उनकी जो रानी हैं उनके साथ में हैं। उनके हाथ पूर्ण रूप से आभूषित हैं, कानों में कुंडल है, सिर में मुकुट है और कुष्मांड नाम का दैत्य उनकी सेवा में है। मय दानव उनकी सेवा में है। जम्भोरु और मुर ये सब असुर उनकी सेवा में हैं। तो चूंकि बलि महाराज ने अपना शरीर दिया था भगवान को दान में, क्योंकि तीन पग भूमि में, दो पग में भगवान ने तीनों लोक नाप लिए थे, तो एक पग में बलि महाराज ने अपना जीवन, अपना पूरा शरीर भगवान को समर्पित कर दिया। तो एक ये कारण बन गया आत्मनिवेदन भक्ति का कि पूर्ण समर्पण। तो ये जो है एक कारण बन गया कि तीन पग पूरे करने के लिए बलि महाराज ने अपना जीवन भगवान को समर्पित किया। और भगवान से बलि महाराज ने कुछ उल्टी बात नहीं बोली। भगवान ने जो है बलि महाराज की काफ़ी निंदा की थी, लेकिन उन्होंने अपने अहंकार का त्याग किया। तो भगवान ने जो है उनको तीन प्रकार के वरदान दिए बलि महाराज को। स्वतल लोक में तो आप रहेंगे और राज्य भोगेंगे और तो भी आपको पुण्य मिलता रहेगा। किन का पुण्य मिलेगा? तीन प्रकार के लोगों का पुण्य मिलेगा बलि महाराज को। पहला पुण्य कैसा है? कोई दान देता है लेकिन वो ब्राह्मण नहीं है या नाम के ब्राह्मण, आजकल तो नाम के ब्राह्मण होते हैं, वो वास्तव में योग्यता नहीं होती ब्राह्मणों की, है ना। तो ऐसे ब्राह्मणों को जो दान देगा तो उसका फल किसको मिलेगा? बलि महाराज को मिलेगा। आप समझे? जो दान देने वाला उसको कुछ फल नहीं मिलेगा, उसका दान निष्फल है, और दान का फल किसको मिलेगा? बलि महाराज को। तीसरा है, मंत्र के बिना कोई हवन करता है तो मंत्र के बिना कोई आहुति डालता है, हवन करता है, तो उसको कुछ भी फल नहीं मिलेगा। किसको मिलेगा? बलि महाराज को मिलेगा। और तीसरा, अशांत मन से कोई जप करेगा अशांत मन से जप करेगा उसे फल कुछ नहीं मिलेगा। किसको मिलेगा? बलि महाराज को मिलेगा, है ना। तो इस तरह से तीन प्रकार से जो है भगवान ने बलि महाराज को सोर्स ऑफ इनकम दे दिए। सोर्स ऑफ इनकम आप जो है आपको मिलता रहेगा, आपके पास जो है ये सब इनकम आती रहेगी। तो ये एक तो त्यौहार हो गया बलि महाराज बलि देवराज पूजा, और दूसरा है गो पूजा। तो आज गो पूजा का त्यौहार है। तो जब भगवान इंद्र की पूजा बंद कराई थी तो उन्होंने यही कहा था कि हम जो है बिल्कुल अशिक्षित जंगली लोग हैं। भगवान ने जो है मतलब ये नहीं कहा कि मेरी पूजा करो, इंद्र की पूजा क्यों कर रहे, इंद्र मेरे सामने क्या है, असंख्य ब्रह्मांडों का स्वामी तो मैं हूँ, ये नहीं कहा भगवान ने। भगवान जो है ब्रजवासियों में इस प्रकार से अपने घोले मिले थे कि भगवान ने कहा कि हम लोग तो जो है इंद्र तो बहुत दूर की चीज़ है, हमें क्या करना है सब शासन से कि किसका शासन चल रहा है, कौन इंद्र है कौन इंद्र नहीं है, हमें क्या करना है सब पूजा करके, हम लोग तो अशिक्षित वनवासी हैं, वन के निवासी हैं। तो वन के निवासी हैं तो हमें तो है गोवर्धन की पूजा करना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट हमें जो कुछ अगर प्राप्त हो रहा है तो इस गोवर्धन पर्वत से प्राप्त हो रहा है। गऊओं को जो है बढ़ाने के लिए जो घास है वो मिल रही है, जल मिल रहा है, झरना मिल रहा है ना, तो हम जो है यही करेंगे। और गऊओं की पूजा करो और ब्राह्मणों की पूजा करो। भगवान ने कहा कि हम लोग जो है हमें जो है सीधे कुछ अगर मार्गदर्शन मिल रहा है और धन संपत्ति मिल रही है और जीविका मिल रही है, जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक चीज़ें मिल रही हैं, तो वो जो है यही हैं, गऊ हैं, ब्राह्मण हैं और पर्वत, तो हम लोग इन्हीं की पूजा करेंगे। तो इस तरह से आज के दिन भगवान ने गऊओं की पूजा कराई, ब्राह्मणों की पूजा कराई और गोवर्धन की पूजा कराई, गो पूजा। और दूसरा गो क्रीड़ा है। तो हरि भक्ति विलास में लिखा हुआ है कि गौ और बैल का आज के दिन श्रृंगार किया जाना चाहिए, उनको सजाना चाहिए वस्त्रों से और उन्हें दौड़ाना चाहिए, बैलों से खेत जुतवाना चाहिए। गो क्रीड़ा का मतलब है कि गौ और बैल के साथ हमें अपने संबंध बहुत अच्छे बनाने चाहिए। ये जो पशु हैं गौ और बैल, ये जो पशु हैं तो इनमें बहुत अधिक संवेदना होती है, संवेदना होती है, ये किसी के प्यार को समझ लेते हैं गाय और बैल, है ना। तो आपकी जो भावना होती है किस प्रकार की आप उनसे जो है करते हैं, सेवा करते हैं, तो इस भावना को ये लोग समझते हैं और भगवान जो है प्रसन्न होते हैं। गो ब्राह्मण हिताय चा, तो भगवान जो है गौ और ब्राह्मणों के हितकारी हैं। तो गो पूजा और गो क्रीड़ा ये सब जो है मतलब आज के दिन का विशेष उत्सव है। रसिकानंद प्रभु के विषय में गौड़ी वैष्णव चरितामृत से मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। इनका चरित्र बहुत विस्तृत है तो हम बहुत विस्तृत चरित्र में नहीं जाएंगे, तो आप लोग सुनिए बड़े ध्यान से। रसिकानंद प्रभु एक राजा के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए। ये आदर्श साधु गौड़ी वैष्णव विद्वान रसिक भक्त और श्यामानंद प्रभु के सर्वाधिक प्रिय शिष्य बने। श्यामानंद प्रभु की आज्ञा से रसिकानंद ने प्रधान पुजारी बनकर पूर्ण समर्पण भाव से अपने गुरु के हर्ष विग्रह गोविंद जी की सेवा की। इनकी सतर्क प्रेम सेवा से गोविंद जी का सौंदर्य और आनंद बढ़ गया। रसिकानंद ने अपनी अपूर्व अर्चा सेवा से भक्तों का मन मोह लिया। गोविंद जी की पूजा दृढ़ता पूर्वक स्थापित करने के बाद इन्होंने श्यामानंद की आज्ञा का पालन करते हुए प्रचार प्रारंभ किया। इन्होंने 40 वर्षों तक व्यापक भ्रमण किया और सबको श्री चैतन्य के संदेश से प्रभावित किया। रसिकानंद ने धार्मिक राजसी परिवारों से लेकर मुसलमानों, म्लेच्छों, संशयवादियों, नास्तिकों तथा जंगली पशुओं तक सबका उद्धार किया। बहुत बहुत बड़ी रेंज है इनकी, बहुत बड़ी रेंज है, जंगली पशुओं से लेकर के राजसी परिवार तक जो है सबका उद्धार किया। एक बार कुछ मत हाथियों ने रसिकानंद पर आक्रमण किया। इन्होंने शांतिपूर्वक उन उपद्रवी हाथियों पर जल छिड़कते हुए उच्चारण किया, गौरांगा गौरांगा कृष्णा कृष्णा। हाथियों ने अपना आक्रमण तुरंत रोक दिया, विनम्रता पूर्वक अपने शीश झुकाए, अपनी सूंड उठाकर हुंकार लगाई, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। यहाँ पर जो हाथी हैं वो दो सूंड वाले हैं, जो हाथी थे आक्रमण कर रहे थे एक सूंड वाले थे, एक सूंड उठा करके हरे कृष्णा बोले। यहाँ पर हाथी हैं दो सूंड वाले, दो सूंड से उठा करके हरे कृष्णा बोलते हैं। देह त्याग करते समय रसिकानंद ने एक प्रबल कीर्तन प्रारंभ कर दिया। देह त्याग कैसे किया इन्होंने, वास्तव में देह त्याग नहीं किया, इन्होंने प्रबल कीर्तन प्रारंभ कर दिया। तब इन्होंने रेमुणा उड़ीसा में क्षीर चोरा गोपीनाथ के अर्चा विग्रह में प्रविष्ट होकर इस जगत का त्याग कर दिया। हरि बोल। शरीर नहीं छोड़ा, शरीर के साथ ही क्षीर चोरा गोपीनाथ में प्रविष्ट हो गए। इस प्रकार से शरीर का त्याग नहीं किया, शरीर सहित इस जगत का त्याग किया। इनके वियोग से विध्वस्त होकर इनके शिष्यों ने अपने मृदंग त्याग दिए, करताल त्याग दिए और अपने शरीर त्याग दिए, एक साथ सब त्याग दिए। इन सब शुद्ध भक्तों की पुष्प समाधियाँ मंदिर के समीप अवस्थित हैं। रसिकानंद प्रभु की पुष्प समाधि राधा श्याम सुंदर मंदिर के निकट श्यामानंद प्रभु की समाधि के साथ ही है। रसिकानंद प्रभु के बारे में एक घटना यह भी बताई जाती है कि नदी के तट पर पुलिन के ऊपर बैठ करके दातून कर रहे थे एक बार, तो एक कनफटा योगी शेर के ऊपर बैठ करके इनकी तरफ आ रहा था वो दिखाने के लिए, कि देखो मेरी शक्ति, मैं शेर के ऊपर बैठ करके चलता हूँ, तुम्हारे पास है ऐसी कोई शक्ति, अगर हो तो दिखाओ। तो शेर पर बैठ करके इनकी तरफ आ रहा था, तो इन्होंने देखा कि इसमें बहुत घमंड है। तो जिस दीवार पर ये बैठे थे पुलिन, पुलिया पुलिया बोलते हैं ना, तो उसी को आज्ञा दी कि तू चल इसकी तरफ, इस योगी की तरफ तू चल। तो वो जो पुलिया है उसमें बैठे बैठे वो जो है उसकी तरफ जब आए, तब वो जो है शेर से उतर करके इनकी उसने शरण ली और मान गया कि आपकी शक्ति तो मेरे पास नहीं है ऐसी, आपके पास जो शक्ति है। और उसको इन्होंने फिर वैष्णव बनाया और इस योग सिद्धियों के जो मिथ्या चमत्कार से उसको मुक्त किया है ना। और इनके विषय में ये भी बताया जाता है कि वैष्णवों की सेवा को जो है ये भगवान की सेवा से बढ़कर के मानते थे। इनका ये विचार था कि वैष्णवों की सेवा से भगवान की भी सेवा हो जाती है और वैष्णवों की सेवा तो होती ही है। जैसे गर्भवती स्त्री अगर भोजन खाती है तो उसके गर्भ में जो बालक है वो भी पुष्ट होता है, उसको भी भोजन मिलता है। उसी प्रकार से भगवान भक्त के हृदय में निवास करते हैं, तो भक्त की सेवा से भगवान की भी सेवा हो जाती है। तो इन्होंने अपने घर में भगवान के अर्चा विग्रह की स्थापना नहीं की थी, बल्कि वैष्णवों के चरणामृत के कई कलश थे, जिनकी इन्होंने स्थापना की थी और उन्हीं की ही पूजा करते थे और दर्शन करते थे और नमस्कार करते थे। और एक बार ऐसा भी हुआ कि इन्होंने अपने घर में सभी वैष्णवों को आमंत्रित किया था, तो अपने सेवक को बोला था कि सभी वैष्णवों के चरणों का जल लेकर के आओ और इकट्ठा करो एक कलश में। तो उसने जो है सब वैष्णवों के चरणों का जल इकट्ठा किया, तो फिर इन्होंने उसको जो है थोड़ा पिया और स्वाद लेकर के बोले कि किसी वैष्णव को तुमने छोड़ दिया है, इसमें स्वाद नहीं आ रहा है क्योंकि तुमने किसी वैष्णव का चरण जल नहीं लिया है। स्वाद से मुझे पता चल गया, बताओ किसी को छोड़ा है? तो सेवक जो है डर के मारे कहता नहीं 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 मैंने किसी को नहीं छोड़ा, सच बताओ छोड़ा है किसी को? बोले हाँ छोड़ा है, एक कोढ़ी वैष्णव है उसको छोड़ा है। तो बोले नहीं नहीं जाओ लेके आओ उसका भी चरण जल लेके आओ, है ना। तो उसका भी चरण जल लाए, जब पिया बोले हाँ अब ये जो है अब चरणामृत ये इसमें टेस्ट आया, स्वाद आया। और वास्तव में वो कोढ़ी वैष्णव, वो वास्तव में कौन थे? भगवान परीक्षा लेने के लिए कोढ़ी वैष्णव का रूप धारण करके आए थे। अरे वो तो इस तरह से इनके विषय में बहुत अद्भुत बातें हैं। श्री रसिकानंद प्रभु आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की, श्री गो पूजा महामहोत्सव की, श्री गो क्रीड़ा महामहोत्सव की, श्री बलि दैत्यराज पूजा महामहोत्सव की। अब मैं जो कथा सुनाने जा रहा हूँ ये गर्ग संहिता से गिरिराज खंड के चार अध्याय हैं, और चार अध्यायों की कथा अगर कोई सुन ले तो उसका कुछ फल भी है, वो जो है आपको बताया जाएगा कि क्या फल है इसका। तो आप लोग बड़े ध्यान से सुनिए, ये कथा राजा बहुलास सुन रहे हैं। और कौन सुना रहे हैं? नारद जी सुना रहे हैं। तो राजा बहुलास ने पूछा, हे देवर से, जैसे बालक खेली खेल में गोबर छत्ते को उखाड़ कर हाथ में ले लेता है, उसी प्रकार भगवान एक ही हाथ से महान पर्वत गोवर्धन को लीला पूर्वक उठाकर छत्र की भांति धारण कर लिया था, ऐसी बात सुनी जाती है। ऐसी बात सुनी जाती है। तो ये प्रसंग कैसे आया? अब इसका जो है शुरू से आखिर तक पूरा विस्तृत वर्णन करिए कि घटना का कारण कैसे बना, किस कारण से ये घटना हुई कि भगवान ने गोवर्धन पर्वत धारण किया। तो राजा बहुलास को पता नहीं है, केवल इतना पता है कि गोवर्धन धारण किया था, लेकिन कारण क्या था, कैसे कारण बन गए, उस समय कैसी आवश्यकता हो गई, तो वो पूछ रहे हैं। कथम दधार भगवान गिरिम गोवर्धनम वरम उच्छलेन्द्रम यथा बालो हस्ते न के न लीलयाम। हे मुनि सत्तम, उन परिपूर्णतम श्री कृष्णचंद्र के उसी दिव्य अद्भुत चरित्र का आप वर्णन कीजिए। परिपूर्णतमस्यास्य श्री कृष्णस्य महात्मनः वदे तच्चरितं दिव्यम अद्भुतम मुनि सत्तम। नारद जी ने कहा कि जैसे खेती करने वाले किसान राजा को वार्षिक कर देते हैं, साल में एक बार किसान राजा को कर देते हैं, उसी प्रकार समस्त गोप प्रतिवर्ष देवराज इंद्र के लिए पूजा अर्पित करते थे। एक समय श्री हरि ने महेंद्र याग के लिए सामग्री का संचय होता देखकर गोप सभा में नंद जी से प्रश्न किया। आज के दिन जब कृष्ण 7 वर्ष के हो गए, और आज के दिन आप हिसाब लगा सकते हैं कि 7 दिन से 7 साल से कितना ज़्यादा हुआ। भाद्र कृष्ण अष्टमी के बाद जो है ये कार्तिक और शुक्ल प्रतिपदा है, ठीक है ना। तो इस तरह से 7 साल और फिर 2 महीना कुछ और दिन ऐसे बनते हैं। तो आज के दिन जो है कृष्ण ने प्रश्न उठाया, उनके इस प्रश्न को सभी गोप सुन रहे थे। सभा में भगवान ने प्रश्न उठाया, सभा थी, मीटिंग क्यों चल रही थी कि महेंद्र याग, इस इंद्र याग में जो है कौन क्या सेवा करेगा, तो वो मीटिंग होती है ना, कोई भी त्यौहार होता है तो उसकी मीटिंग होती है, जन्माष्टमी मीटिंग। तो इंद्र याग की मीटिंग चल रही थी, तो उसी में कृष्ण ने जो है एक अलग ही प्रश्न उठा दिया। अब ये प्रश्न एक बहुत बड़ी बाधा बन गई, वो तो मीटिंग चल रही थी भाई, ये करना है कैसे करना है, लेकिन उन्होंने तो प्रश्न दूसरे उठा दिया, क्यों करना। तो कृष्ण क्या बोले, ये जो इंद्र की पूजा की जाती है इसका क्या फल है? विद्वान लोग इसका कोई लौकिक फल बताते हैं या पारलौकिक फल बताते हैं। लौकिक माने इसी जीवन में कुछ, या तो इसी जीवन में कुछ फल मिलता होगा या अगले जीवन में फल मिलता होगा, तो जरा ये तो बताइए। नंद जी ने कहा, हे श्याम सुंदर, इंद्र का पूजन भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला परम उत्तम है। भूतल पर इसके बिना मनुष्य कहीं और कभी सुखी नहीं हो सकता। श्री भगवान बोले, पिताजी, इंद्र आदि देवता अपने पूर्वकृत कर्मों के प्रभाव से ही स्वर्ग का सुख भोगते हैं, तो उनकी पूजा से हमें क्या है? हमें क्या पुण्य मिलेगा? भगवान कह रहे हैं वे खुद ही अपने पुण्य से उन्होंने स्वर्ग पाया है, और जब पुण्य क्षीण हो जाएंगे तो उनका भी जो है स्वर्ग सुख समाप्त हो जाएगा। तो भगवान कहते हैं, भोग द्वारा शुभ कर्म का क्षय हो जाने पर उन्हें भी मर्त्यलोक में आना पड़ता है। तो इंद्र भी जो है अपना पुण्य क्षीण करके क्या बनेंगे, पता नहीं चींटा बनेंगे या कुत्ता बनेंगे, क्या बनेंगे, तो उनकी पूजा हम क्यों करें? भगवान कह रहे हैं, तो उनकी सेवा को आप मोक्ष का साधन मत मानिए। भगवान बोले, अब देखिए अलग ही प्रश्न आ गया, अब वो सब का सब जो है कैंसिल करा दिया भगवान ने, पूरा का पूरा प्रोग्राम कैंसिल, जिससे ब्रह्मा जी को भी भय प्राप्त होता है। फिर उनके द्वारा पृथ्वी पर उत्पन्न किए गए प्राणियों की दो बातें क्या है? उस काल को ही श्रेष्ठ विद्वान सबसे उत्कृष्ट अनंत और सब प्रकार से बलिष्ठ मानते हैं, इसलिए उस काल का ही आश्रय लेकर मनुष्य को सत्कर्म द्वारा यज्ञपति श्री हरि का भजन करना चाहिए। अपने संपूर्ण सत्कर्मों के फल का मन से परित्याग करके जो श्री हरि का भजन करता है वही परम मोक्ष को प्राप्त होता है, दूसरे किसी प्रकार से उसको मोक्ष नहीं मिलता। ततस्तमाश्रित सुकर्म भी परम भजे धर्यम यज्ञपतिम सुरेश्वरम विसृज्य सर्वम मनसाकृते फलम ब्रजेत परम मोक्षम असौ न चान्यथा। गौ, ब्राह्मण, साधु, अग्नि, देवता, वेद और धर्म, ये भगवान यज्ञेश्वर की विभूतियां हैं। इनको आधार बनाकर जो श्री हरि का भजन करते हैं वे इस लोक में और परलोक में सुख पाते हैं। गोव्य प्रसाद ध्वग्नि सुरा श्रुते तथा धर्मस्यज्ञाधिपतिर्विभूत यहाँ जिसने सुचैते सु हरिम भजंती सदा तुहामुत्र सुखम ब्रजंती ते। भगवान के वक्षस्थल से प्रकट हुआ ये पर्वतों का सम्राट गोवर्धन महर्षि पुलस्त के प्रभाव से इस ब्रजमंडल में आया है। इसके दर्शन से मनुष्य का इस जगत में पुनर्जन्म नहीं होता है। हरि बोल, हरि बोल। समुत्थितो सो हरि वक्षसो गिरिन् गोवर्धनो नाम गिरीन्द्र राजराट समागतो यत्र पुलस्त तेजसा यद् दर्शनात् जन्म पुनर्न विद्यते। गौओं, ब्राह्मणों और देवताओं का पूजन करके आज ही ये उत्तम भेंट सामग्री महान गिरिराज को अर्पित की जाए। तो भगवान ने जो है कार्यक्रम जो है इस तरह से कैंसिल नहीं किया कि कोई बाधा पड़ेगी। भगवान ने कहा कि सब कुछ जो सामग्री है वो वही रहेगी, सब ज्यों की त्यों रहेगी, केवल दिशा बदलना है, पूजा की दिशा बदलना है, बाकी सब कुछ वैसा ही है। तो भगवान कहते हैं कि गौ, ब्राह्मण, देवताओं का पूजन करके ये उत्तम भेंट सामग्री महान गिरिराज को अर्पित किया जाए, और ये यज्ञ नहीं है, क्या है, यज्ञों का राजा है। यही मुझे प्रिय है, यही मुझे प्रिय है, भगवान कह रहे हैं। ये नहीं कह रहे कि मैं साक्षात भगवान हूँ, ये नहीं कह रहे भगवान। भगवान कह रहे हैं यही मुझे प्रिय है, यदि आप ये काम नहीं करना चाहते तो जो इच्छा हो वैसा करिए, तो जो इच्छा करो। भगवान कह रहे हैं यथेच्छसि तथा करो। संपूज्य गोविप्रसुरान महाद्रये दातव्य मध्य व्यपरम्युपायनम ऐसे प्रियो मे मखराज एव ही नचेन यथेच्छास्ति तथा कुरु ब्रज। नारद जी कहते हैं, राजन, उन गोपों में सन्नंद नामक एक बड़े बूढ़े गोप थे, उन्होंने अत्यंत प्रसन्न होकर नंद जी के सुनते हुए श्री कृष्ण से कहा। अब नंद महाराज तो बिल्कुल चुप रह गए, उन्हें कुछ सोचता नहीं, सबके बीच में ये तो बड़ी बाधा हो गई है, और कृष्ण जो कह रहे हैं तो उनकी बात को मना भी नहीं कर सकते। तो नंद महाराज को कुछ सूझ नहीं रहा है, तो सनंद पूछते हैं, क्या पूछते हैं? सनंद बोले, हे नंद नंदन, हे तात, तुम तो साक्षात ज्ञान के भंडार हो, गिरिराज की पूजा किस विधि से करनी होगी ठीक ठीक बताओ। श्री भगवान ने कहा, जहां गिरिराज की पूजा करने हो वहां उनके नीचे की धरती को गोबर से लीप पोत कर वहीं सब सामग्री रखना चाहिए। इंद्रियों को बस में करके भक्ति भाव से ब्राह्मणों के साथ रहकर गंगा जल या यमुना जल से गिरिराज को स्नान कराना चाहिए। फिर सफेद गऊ दुग्ध की धारा से और पंचामृत से स्नान कराकर पुनः यमुना जल से नहलाए। उसके बाद गंध पुष्प वस्त्र आसन भांति भांति के नैवेद्य माला आभूषण उत्तम दीप माला समर्पित करके गिरिराज की परिक्रमा करे। इसके बाद साष्टांग प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर इस प्रकार कहे, शुक्ल गो दुग्ध धारा तथा पंचामृत गिरिम स्नापयित्वा गंध पुष्प पुनः कृष्णा जलेन वयम् वस्त्रम दिव्यम च नैवेद्यम आसनम सर्वतोधिकम माला अलंकार निचयम् दत्त्वा दीपावलिम पराम। अब गिरिराज की स्तुति कैसे है, जो वृंदावन की गोद में अवस्थित है, गोलोक के मुकुट हैं, पूर्ण ब्रह्म के छत्र रूप हैं, उन गिरिराज गोवर्धन को हमारा बारंबार नमस्कार है। नमो वृंदावनांकाय तुभ्यं गोलोक मौलिने पूर्ण ब्रह्मात पत्राय नमो गोवर्धनाय च। तब पुष्पांजलि अर्पित करे, उसके बाद घंटा झांझ मृदंग आदि मधुर ध्वनि करने वाले बाजे बजाते हुए गिरिराज की आरती करे। पुष्पांजलिम तथा कुर्यान नीराजन मतः परम घंटा कांश मृदंगाद्यैर वादित्रैर मधुर स्वने। इसके बाद मंत्र पढ़ते हुए उसके ऊपर लावा की वर्षा करे और श्रद्धा पूर्वक गिरिराज के समीप अन्नकूट स्थापित करे। वेदाहमे तम मंत्रेण वर्षलाजय समाचरेन तत्समीपे चान्नकूटम कुर्या श्रद्धा समन्विता। फिर 64 कटोरों को 5 पंक्तियों में रखे और तुलसी दल में स्थित गंगा यमुना का जल भर दे। फिर एकाग्रचित्त हो गिरिराज की सेवा में 56 भोग अर्पित करे। तब अग्नि में होम करके ब्राह्मणों की पूजा करे और गऊओं और देवताओं पर भी गंध पुष्प चढ़ाए। अंत में श्रेष्ठ ब्राह्मणों को सुगंधित भोजन कराकर अन्य लोगों को, यहाँ तक कि चंडाल भी छूटने ना पाए, उत्तम भोजन प्रदान करे। 65 कुरियात सेवाम समाहिता ब्राह्मणान पूज्य गासुरान गंध पुष्प के भोजयित्वा द्विजवरान सौगंधैर मिष्ट भोजन अन्येभ्यश्चा सुपाकेभ्यो दद्यान भोजन उत्तमम। इसके बाद गोपियों और गोपों और गऊओं के सामने नृत्य करना चाहिए, मंगल गीत गाएं, जय जयकार करते हुए गोवर्धन पूजन का उत्सव संपन्न करें। गोपी गोपाल वृंदैश्चा गवाम नृत्यम चकारेन मंगलैर जय शब्दैश्चा कुर्यान गोवर्धनोत्सवम। जहाँ गोवर्धन नहीं है वहाँ गोवर्धन पूजा की क्या विधि है, एक ये भी तो प्रश्न है। भगवान कह रहे हैं जहाँ गोवर्धन ना हो तो गोवर्धन पूजा की क्या विधि है। ये सुनो, गोबर से गोवर्धन का बहुत ऊंचा आकार बनाए, फिर उन्हें पुष्प समूहों लता जालों और सीकों से सुशोभित करके उसे ही गोवर्धन गिरी मानकर भूतल पर मनुष्यों को सदा उसकी पूजा करने चाहिए। वही करते ना हम लोग। पुष्प व्यू है लता जालैर ईशिका भी समन्वित पूजनीया सदा मर्त्यैर गिरी गोवर्धन ओ भोवि। यदि कोई गोवर्धन की शिला ले जाकर पूजन करना चाहे तो जितना बड़ा पत्थर ले जाए उतना ही सोना उस पर्वत पर छोड़ दे। जो बिना सोना दिए वहां की शिला ले जाएगा वो महा रौरव नरक में पड़ेगा। हरि बोल। सालग्राम भगवान की सदा सेवा करनी चाहिए। सालग्राम के पूजक को पाप उसी तरह स्पर्श नहीं करते जैसे पद्म पत्र पर जल का लेप नहीं होता। जो श्रेष्ठ द्विज गिरिराज शिला की सेवा करता है वो सातों द्वीपों से युक्त भूमंडल के तीर्थों में स्नान करने का फल पाता है। गिरिराज शिला से वाम यह करो ते द्विजोत्तम सत्वद्वीप महातीर्था वगाह फल भेति सह। जो प्रतिवर्ष गिरिराज की महापूजा करता है, जो प्रतिवर्ष गिरिराज की महापूजा करता है वो इस लोक में संपूर्ण सुख भोग कर परलोक में मोक्ष प्राप्त करता है। गिरिराज महापूजाम वर्षे वर्षे करोति अहम यह सर्व सुखम भोक्त्वा मूत्र मोक्षम प्रयाति सह। नारद जी कहते हैं कि श्री कृष्ण की ये बात सुनकर श्री नंद और सनंद आदि ब्रजेश्वरगण बड़े विस्मित हुए। फिर उन्होंने पहले करने से त्याग कर श्री गिरिराज का पूजन, श्री गिरिराज पूजन का आयोजन किया। कि कृष्ण ने इतनी विस्तार से सब बातें बताई तो फिर विस्मित हो गए, है ना, कि अगर बालक कुछ कह रहा है तो फिर इसमें कुछ बहुत रहस्य है। तो उन्होंने जो है फिर स्वीकार कर लिया कि बिना किसी संशय के बालक कितनी बातें बता रहा है ना। हे राजन, नंदराज अपने दोनों पुत्र बलदेव और श्री कृष्ण को और भेंट पूजा की सामग्री को लेकर यशोदा जी के साथ गिरिराज पूजन के लिए उत्कंठित हो प्रसन्नता पूर्वक गए। उनके साथ गर्ग जी भी गए। वे अपनी पत्नी के साथ बहुत ऊंचे विचित्र वर्णों से रंगे हुए और सोने की सांकल धारण करने वाले हाथी पर आरूढ़ थे। कौन हाथी पर आरूढ़ थे? कौन? गर्ग जी, आचार्य। आचार्य का जो है बहुत सम्मान होता है ना। तो गर्गाचार्य को जो है, चूंकि गोवर्धन पूजा का आचार्य बनाया गया था, तो विचित्र वर्णों से रंगे हुए और सोने की सांकल धारण करने वाले हाथी पर चढ़ करके गर्गाचार्य अपनी पत्नी के साथ वहां पहुंचे। किस लिए? पूजा कराने के लिए। परम समारोह महोन्नतम गजम विचित्र वर्णम धृत हेम श्रृंखलम गोवर्धनांतम प्रयोग वाम गण सरंधन शक्र एव प्रिया युतः। नंद, उपनंद और वृषभानुगण अपने पुत्रों, पौत्रों और पत्नियों के साथ यज्ञ की पूरी सामग्री लेकर गिरिराज के पास आए। नंद कितने हैं? 9 नंद हैं। उपनंद कितने हैं? 9 उपनंद हैं। और वृषभानु कितने हैं? 6 वृषभानु हैं। ये सब अपने पुत्रों पौत्रों के साथ, पत्नियों के साथ यज्ञ की पूरी सामग्री लेकर के कहाँ पर आए? गिरिराज, गिरिराज के पास आए। नंदोपनंदा वृषभान अवश्याम पुत्र से पौत्र से सहांगना भी समाये हो श्री गिरिराज पार्श्वम सर्वम समानीय च यज्ञ भारम। हजारों शिविका में आरूढ़ होकर दिव्य वस्त्रों और रत्नमय आभूषणों से विभूषित श्री राधा सखियों के साथ वहां आकर सुशोभित हुई। हजारों सेविकाएं हैं। सेविका मतलब पालकी है। हजारों पालकियों में सवार होकर के राधा रानी सखियों के साथ वहां आई। हे राजन, श्री राधा के दोनों बगल में आई हुई विविध अलंकारों से अलंकृत करोड़ों सखियों से आवृत दो सर्वश्रेष्ठ सखियां हैं ललिता और विशाखा। राधा रानी के दोनों तरफ ललिता विशाखा और इनके साथ में करोड़ों सखियां हैं। चमन डुलाती हुई शोभा पा रही थी ललिता विशाखा, चमन डुला रही राधा रानी के ऊपर और ललिता और विशाखा की सेवा में करोड़ों सखियां हैं। समागते पार्श्व गते सुलंकृते राजन सखी कोटि समावृते परे सक्यो विभाते ललिता विशाखे चंद्रानने चालिते चारु चामरे। इसी प्रकार रमा रमा सखी का एक यूथ है और विरजा सखी का यूथ है, माधवी सखी का यूथ, माया सखी का यूथ, यमुना देवी का यूथ है, गंगा देवी का यूथ है, ये सब जो है इनके अलग अलग यूथ हैं। फिर 8 सखियाँ अलग हैं, फिर 16 सखियाँ अलग हैं, फिर उनके यूथ में असंख्य सखियाँ हैं। मिथिलापुर निवासिनी गोपियाँ अलग हैं, कौशल प्रदेश वासिनी गोपियाँ अलग हैं, अयोध्यापुर निवासिनी गोपियाँ अलग हैं, श्रुति रूपा गोपियाँ अलग हैं, ऋषि रूपा गोपियाँ अलग हैं, यज्ञ सीता स्वरूपा गोपियाँ अलग हैं, वनवासिनी गोपियाँ अलग हैं, रमा आदि वैकुंठ वासिनी देवियाँ हैं, ये अलग हैं, वैकुंठ से भी ऊपर के लोकों में रहने वाली दिव्यांगनाएँ हैं, ये अलग हैं, और परम उज्ज्वल श्वेत दीप निवासिनी बालाएँ हैं, और ध्रुव आदि लोकों में रहने वाली अलग सखियां हैं, और लोकाचल में रहने वाली देवी रूपा गोपियां अलग हैं। ये सब के दल, सबके अलग अलग यूथ यहाँ पर आए हैं। कुल मिलाकर कितने यूथ हैं? 100 यूथ हैं, 100 प्रकार के यूथ हैं। जो समुद्र से उत्पन्न लक्ष्मी की सखियां हैं, उनका यूथ अलग है। दिव्य गुण त्रयमयी अंगनाएं, अदिव्य विमानचारियों की वनिताएं, औषधि स्वरूपा गोपियां अलग हैं। जलंधर के अंतःपुर वासिनी स्त्रियां भी गोपियां बनी हैं, अलग हैं। समुद्र कन्याएं ये अलग हैं। बृहस्पति नगरी में निवास करने वाली अलग गोपियां हैं। महाराज पृथु के समय में बृहस्पतिपुरी में जो स्त्रियां थी वो भी पति बनाना चाहती थी भगवान को, तो वे भी गोपियां बनी हैं। सुतल लोक में निवास करने वाली स्त्रियां वो भगवान वामन को देख करके उनको पति बनाना चाहती हैं, तो वे भी गोपियां बनी, सुतल लोकवासिनी गोपियां। और गिरिराज गोवर्धन के पास साप के साप इतनी सखियां जो है एकत्रित हुई हैं। इसी प्रकार अप्सरा गोपियां अलग हैं, नाग कन्या गोपियां अलग हैं, ब्रजवासिनी के यूथ अलग वस्त्र आभूषणों से विभूषित होकर हाथ में पूजा की सामग्री लेकर और दीप लिए गिरिराज के पास आई। बालक हैं, युवक हैं, वृद्ध हैं, वे सब पीत वस्त्र धारण किए, पगड़ी धारण किए, मोर पंख धारण किए, सुंदर हार गुंजा वनमाला से विभूषित होकर के और नई छड़ी लिए हुए और वेणु लिए हुए आकर के शोभा पाने लगे। गोपाश वृद्धा शिशवो युवान पीताम्बरोष्णी सकबर है मंडिता श्रीहार गुंजावन मालिका भी रेजो समेता नवयष्टि वेणु भी। गिरिराज हिमालय के मुख से इस उत्सव का समाचार सुनकर के शिवजी भी आ गए। ससुर से समाचार सुना, शिवजी के ससुर कौन है? हिमालय। तो ससुर के मुख से दामाद ने समाचार सुना। क्या समाचार सुना? आहा, बहुत बड़ा उत्सव हो रहा है गिरिराज पूजन का। तो शिवजी आए तो अपना पूरा उन्होंने श्रृंगार किया। कैसे श्रृंगार किया? मस्तक पर जटाजूट बांधे, गंगा धारण किए, हाथ में कपाल लेकर के, अंगों में चेदा की भस्म लगा करके, सर्पों की माला धारण करके और सर्पों के कंगन से विभूषित होकर के भांग धतूरा और विष पी करके मतवाले होकर के आए। अब मस्ती आई खूब, मतवाले होकर के आए गिरिराज नंदिनी उमा के साथ नंदीश्वर पर आरूढ़ होकर के प्रमथ गणों से घिरे हुए यहाँ पर पहुँच गए। मुख्य मुख्य राजर्षि आए, ब्रह्मर्षि आए, देवर्षि आए, सिद्धेश्वर आए, हंस आदि योगी आए, हजारों ब्राह्मण गिरिराज का दर्शन करने के लिए आस पास एकत्र हो गए। राजर्षि विप्रर्षि सुरर्षि सिद्धेश योगेश्वर हंस मुख्या आजग मुरारान गिरि दर्शनार्थम सहस्रशो विप्र गणा समेता। गोवर्धन पर्वत की एक एक शिला रत्नमय हो गई, उसके सोने के श्रृंग चारों ओर दीप्ति फैलाने लगे। हे राजन, वो पर्वत मतवाले भ्रमरों और झरनों से शोभित कंदराओं से बहुत बड़े गजराज की शोभा धारण करने लगा। उस समय मेरु और हिमालय आदि पर्वत भी दिव्य रूप धारण करके आए। सुमेरु पर्वत, हिमालय पर्वत, ये भी दिव्य रूप धारण करके आए पूजा देखने के लिए, गिरिराज की पूजा देखने के लिए। भेंट और मांगलिक वस्तुएं हाथ में लिए गोवर्धन को प्रणाम करने लगे। तदैव शैला किल मूर्ति मंता सोपायना मेरु हिमाचला दिया ने मुर्गिरि मंगल पाणि अस्तम गोवर्धनम रूप धरम गिरीन्द्र। भगवान श्री कृष्ण की बताई हुई विधि के अनुसार ब्राह्मणों द्वारा गोवर्धन पूजन करके ब्राह्मणों अग्नियों और गौओं की पूजा करने के पश्चात नंद ने गिरिराज की सेवा में बहुत सा धन बहुमूल्य भेंट सामग्री प्रस्तुत की। नंद उपनंद वृषभानु और गोपियां और गोपगण नाचने गाने और बाजे बजाने लगे। उन सब के साथ हर्ष से भरे हुए श्री कृष्ण ने गिरिराज की परिक्रमा की। नंदोपनंदैर वृषभानुभिश्चा गोपी गणैर गोप गणैः प्रहर्चितः गायद्भिरा नर्तन वाद्य तत्परैर चकार कृष्णोद्रीवरैः प्रदक्षिणाम्। तब आकाश से देवता फूल बरसाने लगे और भूतलवासी लोग लाजा की वर्षा करने लगे, छींटने लगे लाजा। उस यज्ञ में पर्वतों का सम्राट गोवर्धन लोगों से घिरकर किसी महाराज के समान सुशोभित होने लगा। देवेशु वर्षत्सु च पुष्पे वर्षम जनेशु वर्षत्सु च लाज संघम रेजे महाराज एवाध्वरे जनेर गोवर्धनो नाम गिरीन्द्र राजराज। साक्षात श्री कृष्ण भी गोवर्धन के बीच से एक दूसरा विशाल रूप धारण करके निकले और मैं गिरिराज गोवर्धन हूं यूं कहते हुए वहां का सारा अन्नकूट खाने लगे। हरि बोल। तो भगवान जो है इंद्र की पूजा से संतुष्ट नहीं हो रहे थे, क्यों? क्योंकि इंद्र पूजा करा रहा था अपनी, लेकिन वो पूजा भगवान को नहीं दे रहा था। तो एक चोरी हो रही थी, तो भगवान की आंखों के सामने ही चोरी हो रही है, क्योंकि देवता जो है चोरी कर रहा है, वो अपनी पूजा करा रहा है, अपनी पूजा कर रहा है ना। लेकिन ये तो हरिदास वर्य हैं गिरिराज गोवर्धन, तो उनकी पूजा जो है क्या है, वो भगवान की डायरेक्ट पूजा है, तो ये जो है पूजा अपने पास नहीं रखते, भगवान के पास पहुंचाते हैं। तो भगवान स्वयं जो है अपना परिचय देते हैं कि मैं गिरिराज गोवर्धन हूँ, मेरा दर्शन करो, और भोजन करने लगे। कृष्णोपि साक्षान् ब्रज शैल मध्यान् धृत्वाति दीर्घम किलचान्य रूपम शैलोस्मि लोकानति नीति भाष्यंसन जगात सर्वम कृत मन कूटम। गोपालों और गोपियों के समुदाय में जो मुख्य मुख्य लोग थे उन्होंने पर्वत का ये प्रभाव अपनी आंखों देखा और गिरिराज को वहाँ वर देने के लिए देखकर सबके सब आश्चर्यचकित हो गए। अरे ये तो वरदान देने के लिए भी कह रहे हैं, ये तो इंद्र ने कभी ऐसे दर्शन नहीं दिया ना कभी वरदान दिया। अरे ये तो जो है एक बार की पूजा से ही साक्षात भोजन किया, प्रसन्न हुए, अभी वरदान भी देना चाहते हैं। तो सबके मन में अपूर्व उल्लास छा गया। उस समय गोपों ने कहा, हे प्रभु, आज हमने जान लिया कि आप साक्षात गिरिराज देवता हैं। आज स्वयं नंद नंदन ने हमें आपके दर्शन का अवसर दिया है। आपकी कृपा से हमारी गौएं और हमारे बंधु प्रतिदिन इस भूतल में बढ़ते रहे। ज्ञातोऽसि गोपैर् गिरिराज देवः प्रदर्शितो नंद सुतेन साक्षात् नो गोधनम् वा किल बन्धुवर्यो वृद्धिं समायातो दिने दिने कौम। ऐसा ही होगा, क्या बोले? एवमस्तु। जब वरदान देते हैं तो क्या कहते हैं? एवमस्तु, ऐसा ही होगा। यूं कहकर किरीट और केयूर आदि आभूषणों से विभूषित गिरिराज गोवर्धन क्षण भर में वहां उनके निकट ही अंतर्धान हो गए। तथास्तु चोक्त्वा गिरिराज राजो गोवर्धनो दिव्य वपुर दधानः किरीट केयूर मनोहरांगः छड़ेन तत्रांतरे धीयतारान। तब नंद उपनंद वृषभानु और बलदेव वृषभानु वर सुचंद्र श्री नंदराज श्री हरि और समस्त गोप गोपियां अपने गौओं के साथ वहां से चले। ब्राह्मण योगेश्वर और सिद्ध शिव आदि देवता अन्य सब लोग गिरिराज को प्रणाम करके उनकी पूजा करके प्रसन्नता पूर्वक इच्छा ना होने पर भी अपने अपने घर को गए। किसी की इच्छा नहीं हो रही जाने की तो भी गए। हे राजन, श्री कृष्णचंद्र के इस उत्तम चरित्र का और गिरिराज किस विचित्र महोत्सव का मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया। ये पवित्र प्रसंग बड़े बड़े पापों का हरण करने वाला है। हरि बोल। श्री कृष्णचंद्रस्य परम चरित्रम गिरीन्द्रराजस्य महोत्सवम च मया तवाग्रे कथितम विचित्रम नृणाम महापापहरम पवित्रम। अब नारद जी कहते हैं, राजन, तब मेरे मुख से अपने यज्ञ का लोप और गोवर्धन की पूजा होने का समाचार सुनकर इंद्र को बड़ा क्रोध हुआ। मेरे मुख से सुना, मीडिया तो मैं ही हूँ, नारद जी कहते हैं है? तो मैंने उसको ऐसे बताया जिससे उसको गुस्सा आए। मैंने बताया कलह प्रिय नारद जी है, तो ऐसे बताया, ये नहीं बताया कि भगवान है परमेश्वर है कृष्ण, नहीं है, कृष्ण जो है एक बालक है और उनके कहने से जो है उन्होंने तुम्हारी पूजा जो है बंद कर दी है, और काफी समय से चलती रही थी तुम्हारी पूजा, लेकिन अब बंद हो गई है। तो मेरे मुख से यज्ञ का लोभ सुनकर और गोवर्धन की पूजा होने का समाचार सुनकर इंद्र ने बड़ा क्रोध किया। उन्होंने सामर्थक नामक मेघों को, जिनका बंधन केवल प्रलय काल में खोला जाता है, बुलाकर तत्काल वृक्ष का विनाश कर डालने के लिए भेजा। प्रलय काल 14 मनवंतर बीतने के बाद प्रलय होती है, ब्रह्मा जी के दिन का अंत होता है और यह 7वां मनवंतर चल रहा है। तो प्रलय काल के मेघों को आज्ञा देने का की कोई आवश्यकता ही नहीं है, इंद्र ने अपना वीटो पावर लगा दिया, भाई चलो खोल दो इनको, खोल दो, है ना। आज्ञा पाते ही विचित्र वर्ण वाले मेघ रोज पूर्वक गर्जन करते हुए चले। अब इनका रंग भी देखो कैसा है, ये प्रलय काल के मेघ होते हैं, है ना, आप सुन सकते हैं, कभी देखा नहीं होगा, कभी देखोगे नहीं। विचित्र वर्ण वाले मेघ, कोई तो काले हैं और कोई पीले हैं, कोई हरे रंग के हैं, किन्ने की कांति वीर बहुटी नामक कीड़े की तरह लाल, एकदम लाल कपूर के समान, कोई सफेद हैं, कोई नील कमल के समान हैं। इस तरह नाना रंगों के मेघ हाथी के समान मोटी बारी धाराओं की वर्षा करने लगे, और कुछ मेघ हाथी की सूंड के समान मोटी धाराएं गिराने लगे। हस्तितुल्यान वारि बिंदुन वृषस्ते मदोधताम हतिशुंडा समाभिषा धाराभिर चंचलाश्चये। देखिए कुछ मेघ हैं जो बूंदों की वर्षा कर रहे हैं, तो प्रलय काल के मेघ हैं, अगर बूंदों की वर्षा कर रहे हैं तो कैसे हैं? हस्तितुल्यान वारि बिंदुन, हाथी के बराबर बूंद है। क्या समझे? प्रलय काल के मेघ अगर बूंदों की वर्षा करेंगे तो कैसी बूंद होगी? वो हाथी के बराबर बूंद है। हस्तितुल्यान वारी बिंदुन और हस्तिशुंडा समाभिषा धारा भी, और जो धारा की वर्षा करते हैं मेघ, उनकी धारा कैसी होती है? हाथी की सूंड के समान धारा। धारा भी अगर होगी तो कैसी होगी? हाथी की सूंड के समान होगी, और अगर बूंदों की वर्षा होगी तो वो भी बूंद कैसे होंगे? हाथी के समान बड़ी बड़ी बूंदें होंगी। पर्वत शिखर के समान करोड़ों ओले गिरने लगे, पर्वत शिखर के बराबर ओले, क्या हाल होगा। सादी प्रजन आंधी चलने लगी, जो वृक्षों घरों को उजाड़ फेंकती थी। हे राजन, प्रलय कर मेघों और वज्रपातों का महाभयंकर शब्द ब्रज भूमि पर व्याप्त हो गया। उस भयंकर शब्द से सातों लोकों और पातालों सहित सारा ब्रह्मांड गूंज उठा। नीचे के सात लोक, नीचे के सात पाताल, ऊपर के सात लोक सहित पूरा ब्रह्मांड क्या हो गया? व्याप्त हो गया। दिग्गज विचलित हो गए, आकाश से भूतल पर तारे टूट टूट कर गिरने लगे। ननादतेन ब्रह्मांडम सप्तलोकैर्विलयसः विचेलोर्दिग्गजास्तारा ह्यपतन भूमि मंडलम। अब तो प्रधान प्रधान गोप भयभीत होकर प्राण बचाने की इच्छा से अपने अपने शिशुओं और कुटुंब को आगे करके नंद मंदिर में आए। बलराम सहित श्री नंद नंदन के शरण में जाकर समस्त भयभीत ब्रजवासी उन्हें प्रणाम करके कहने लगे। गो बोले, हे महाबाहु राम, हे राम, हे ब्रजेश्वर कृष्ण, हे कृष्ण, इंद्र के दिए हुए इस महान कष्ट से आप अपने जनों की रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। देखिए मंत्र क्या है, रक्षा मंत्र क्या है? राम राम महाबाहो, कृष्ण कृष्ण ब्रजेश्वर, पाही पाही महाकष्टान इंद्रदत्तान जान जनान। रक्षा मंत्र, आपके कहने से हम लोगों ने इंद्रियां छोड़कर गोवर्धन पूजा का उत्सव मनाया, इससे आज इंद्र का कोप बहुत बढ़ गया है, अब शीघ्र बताओ हमें क्या करना चाहिए। नारद जी कहते हैं, राजन गोपों और ग्वालों से युक्त गोकुल को व्याकुल देख और बछड़ों सहित गौओं को भी पीड़ित देखकर भगवान बिना किसी घबराहट के बोले। भगवान में कोई घबराहट नहीं है, बाकी सब में घबराहट है। और भगवान क्या बोले? श्री भगवान ने कहा, आप लोग डरे नहीं, समस्त परिकरों के साथ गिरिराज की तलहटी में चलें, जिन्होंने आपकी पूजा ग्रहण की है वही आपकी रक्षा करेंगे। हरिओम। तो भगवान जो है अपने ऊपर श्रेय नहीं लेते हैं, यश अपने ऊपर नहीं ले रहे हैं, कहने जिन्होंने पूजा ग्रहण करी है तो वो रक्षा भी तो वही करेंगे। नारद जी कहते हैं, हे राजन, यों कहकर श्री हरि सुजनों के साथ गोवर्धन के पास गए, उस पर्वत को उखाड़ कर एक ही हाथ से खेल खेल में ही धारण कर लिया। हरिओ इत्युक्त्वा सुजन सार्धम एत गोवर्धनम हरि समत्पाट दधारात्रिम हस्ते न केन लीलया। जैसे बालक बिना श्रम के गोबर छत्ता उठा लेता है, अथवा जैसे हाथी अपनी सूंड से कमल को अनायास उखाड़ लेता है, क्या परिश्रम है हाथी को कमल उखाड़ने में, क्या परिश्रम है। उसी प्रकार कृपालु करुणामय प्रभु श्री ब्रजराज नंदन गोवर्धन पर्वत को धारण करके सुशोभित हुए। यच्छ यथोच्छलेन्द्रम शिशुरस्त्रमो गजः स्वपुष्करेण चपुष्करम गिरिम धृत्वा बभो श्री ब्रजराज नंदनः कृपा करो सौ करुणामयः प्रभु। फिर वे गोपों से बोले, हे माँ, हे पिता, हे ब्रजेश्वरगण, आप सब लोग सारी सामग्री संपूर्ण धन और गऊओं के साथ गिरिराज के गर्त में घुस जाइए। यही एक ऐसा स्थान है जहां इंद्र का कोई भय नहीं है। श्री हरि का यह वचन सुनकर गऊओं कुटुंब और अन्य समस्त सामान के साथ गोवर्धन पर्वत के गड्ढे में चले गए। श्री कृष्ण का अनुमोदन पाकर बलराम जी सहित सभी सखा ग्वालों ने पर्वत को रोकने के लिए अपनी अपनी लाठियों को लगा दिया। कृष्ण ने कहा, लगाओ लगाओ, आप लोग भी काम करो। तो सबने अपनी अपनी लाठी लगाई। पर्वत के नीचे जल प्रवाह आ रहा था। अब सोचिए इतना पानी जाएगा कहाँ, तो उस गड्ढे में तो आएगा ही पानी, है ना। तो फिर क्या किया भगवान ने, एक बहुत बड़ा प्रश्न है। जल प्रवाह आ रहा था तो मन ही मन उन्होंने सुदर्शन चक्र का और शेष का स्मरण किया। उस पर्वत के ऊपर स्थित होकर करोड़ सूर्यों के समान तेजस्वी सुदर्शन चक्र गिरती हुई जल धाराओं को पीने लगा। करोड़ सूर्यों के समान ऊपर ही ऊपर, अब नीचे पानी आएगा ही नहीं, ऊपर ही ऊपर पीने लगा चक्र, जैसे अगस्त मुनि ने समुद्र को पिया था। और अब जो पानी नीचे है वो उसको कैसे रोका जाए, उसके लिए एक वाटर प्रूफ दीवार बननी चाहिए। तो भगवान ने शेष जी को आज्ञा दी कि वाटर प्रूफ दीवार बनाइए। तो शेष जी ने चारों ओर से गोलाकार स्थित होकर के वाटर प्रूफ दीवार बना दी उसी के समय तुरंत। गोवर्धनधारी श्री हरि एक सप्ताह तक स्थिर भाव से खड़े रहे। समस्त गोप चकोरों की भांति श्री कृष्णचंद्र की ओर निहारते हुए बैठे रहे 7 दिन। तब हाथी पर एरावत हाथी पर चढ़कर अपनी सेना साथ ले रोष से भरे हुए इंद्र ब्रज मंडल में आए। उन्होंने दूर से नंद ब्रज को नष्ट करने की इच्छा से अपना वज्र चलाने की चेष्टा की। उन्होंने देखा कि अरे पर्वत के द्वारा रक्षा हो रही है, तो पर्वत को नष्ट करना तो मेरा बाएं हाथ का काम है। वज्र उनके पास में वज्र किस लिए होता है, पर्वतों को चूर्ण करने के लिए। तो उन्होंने इंद्र ने क्या किया, वज्र चलाया। वज्र को मैं भी चूर्ण करता हूं, किंतु श्री कृष्ण ने वज्र सहित उनकी भुजा को स्तंभित कर दिया। क्या हुआ, चलाओ वज्र, हिला भी नहीं सकते, अपना हाथ हिला भी नहीं सकते, है ना। और भगवान ने अभी एक्शन लिया इंद्र के ऊपर, अभी तक इंद्र के ऊपर एक्शन नहीं लिया था, दूसरे उपाय से रक्षा कर रहे हैं। जो वर्षा कर रहे हैं मेघ, अगर भगवान चाहें तो मेघों को ही दूर भगा सकते थे, है ना, तो भगवान ने उनको भी दूर नहीं भगाया, है ना। तो भगवान ने इंद्र के किसी कार्य में बाधा नहीं डाली, लेकिन जहाँ गोवर्धन को जो है चूर्ण करने के लिए वज्र चलाना चाहा, अब भगवान ने एक्शन लिया, यहाँ पर जो है तुम हाथ भी नहीं हिला पाओगे। तो भगवान ने इंद्र के हाथ को स्तंभित कर दिया। दूराचिक्षेपे वज्रम स्वम नंद गोष्ठा जिघांसयाम स्तंभया मास शक्रस्य सवज्रम माधवो भुजम। फिर तो इंद्र भयभीत हो गए। अब इंद्र भयभीत हुए जी, अभी तक कोई कृष्ण ने अपना अपनी तरफ से एक्शन नहीं लिया था ना इंद्र के विरुद्ध। तो इंद्र सोच रहा था कि अरे ये लोग जो है अपना उपाय कर रहे हैं तो मैं भी अपना उपाय करूँगा। लेकिन जहाँ हाथ हो गया, अकड़ गया, तो भयभीत हो गए और शेर की चोट खाकर हाथी भागे। जैसे क्या, शेर की चोट खाकर हाथी भागे, उसी प्रकार देवताओं के साथ सहसा भागे। उसी समय सूर्योदय हो गया, बादल इधर उधर छट गए, हवा का वेग रुक गया, नदियों में बहुत थोड़ा पानी रह गया, पृथ्वी पर कीचड़ का नाम भी नहीं रहा। हरि बोल। आकाश निर्मल हो गया और पशु और पक्षी सुखी हो गए। विपंकम भूतलम जातम निर्मलम खम्ब भूभाम चतुष्पदा पक्षिणश्चा सुखमा पोस्ततस्ततः। तब भगवान की आज्ञा पाकर समस्त गोप पर्वत के गर्द से अपना अपना गोधन लेकर धीरे धीरे बाहर निकले। उसके बाद गोवर्धन धारी ने अपने सखाओं से कहा, तुम लोग भी निकलो। जिन्होंने लाठी लगाई थी अपने, भगवान कह रहे तुम लोग निकलो। सब लोग तो निकल गए लेकिन जो लाठी लगाए थे, भगवान के तुम लोग भी निकलो। तब वे बोले, नहीं, हम लोग अपने बल से पर्वत को रोके हुए हैं, तुम ही निकल जाओ। उन सब को इस तरह की बातें करते देख गोवर्धन धारी श्री हरि ने पर्वत का आधा भार उन पर डाल दिया। आधा भार डाल दिया। बेचारे निर्बल गोप बालक उस भार से दबकर गिर पड़े। तब उन सबको उठाकर श्री कृष्ण ने उनके देखते देखते पर्वत को पहले की भांति लीला पूर्वक रख दिया। करेण तान समत्थाप्य स्वस्थाने पूर्वत गिरे सर्वेशाम पश्यताम कृष्णः स्थापयामास लीलया। हे राजन, उस समय प्रमुख गोपियों और प्रधान प्रधान गोपों ने नंद नंदन का पूजन किया। अब गोवर्धन पूजा के बाद पूजा हुई, कृष्ण की पूजा हुई। कैसे, दही दूध का भोग अर्पित किया कृष्ण को, कि अब चोरी नहीं करनी पड़ेगी। दही दूध का भोग अर्पित किया और सबने उनके चरणों में प्रणाम किया। तदेव गोपी गण गोप मुख्या संपूज कृष्णम नृप नंद सोनुम गंधाक्षताद्यैर दधिदुग्ध भोगैर ज्ञात्वा परम नेमुरतिव सर्वे। हे राजन, नंद यशोदा रोहिणी बलराम और सन्नंद आदि वृद्ध गोपों ने श्री कृष्ण को हृदय से लगाकर धन का दान किया और दया से द्रवित होने शुभ आशीर्वाद प्रदान किए। नंदो यशोदा नृप रोहिणी चा बलस्य सन्नंद मुखा स वृद्धा आलिंग कृष्णम प्रद्योधनानी शुभाशसा संयुर घृणार्ता। तब उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करके समस्त ब्रजवासी सफल मनोरथ होकर नंद नंदन के समीप गाने बजाने और नाचने लगे और उन श्री हरि को आगे करके अपने घर को लौटे। उसी समय हर्ष से भरे हुए देवता वहाँ नंदन वन के सुंदर सुंदर फूलों की वर्षा करने लगे और आकाश में खड़े प्रधान प्रधान गंधर्व और सिद्धों के समुदाय गोवर्धनधारी के यश गाने लगे। नारद जी कहते हैं, हे राजन, तब गर्व गल जाने के कारण इंद्र देवताओं के साथ उस पर्वत पर आए और एकांत में श्री कृष्ण को प्रणाम करके उनसे बोले। इंद्र ने कहा, आप देवताओं के भी देवता सर्वसमर्थ है पूर्ण परमेश्वर पुराण पुरुष पुरुषोत्तमोत्तम प्रकृति से परे और परात्पर श्री हरि हैं स्वर्ग के स्वामी ही, हे जगतपते मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। इंद्र ने प्रार्थना की, क्या, त्वम देव देवा परमेश्वर प्रभु पूर्णा पुराणा पुरुषोत्तमो परात्परस्त्वं प्रकृते परो हरिर् मां पाहि पाहि द्विपते जगत्पते। धर्म गौ और वेद की रक्षा करने के लिए 10 अवतार धारण करने वाले भगवान आप ही हैं। इस समय आप परिपूर्ण देवता कंस आदि देवताओं के विनाश के लिए अवतीर्ण हुए हैं। आपकी माया से जिनकी चित्त वृत्ति मोहित है, जो मत से उन्मत्त है, वही मैं आपका अपराधी इंद्र हूँ। जैसे पिता पुत्र के अपराध को क्षमा कर देता है, उसी प्रकार आप मुझ अपराधी को क्षमा कीजिए। हे देवेश्वर, हे जगन्निवास, मुझ पर प्रसन्न होइए। गोवर्धन को उठाने वाले आप गोविंद को नमस्कार है। गोकुल निवासी गोपाल को नमस्कार है। गोपालों के पति, गोपीजनों के भर्ता और गिरिराज के उद्धरता को नमस्कार है। करुणा की निधि, जगत की विधाता, विश्व मंगलकारी, जगत के निवास स्थान आपको प्रणाम है। जो विश्व विमोहन और करोड़ों काम देवों के भी मन को मत देने वाले हैं, उन वृषभानु नंदिनी के स्वामी और नंदराज कुल दीपक परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार है। असंख्य ब्रह्मांडों के पति, गोलोक धाम के अधिपति और बलराम के साथ रहने वाले आप साक्षात भगवान श्री कृष्ण को बारंबार नमस्कार है, नमस्कार है। दशावतारो भगवान त्वमेव रक्षया धर्म गवाम तेश्च अद्यैव जाता परिपूर्ण देवा कंसादि दैत्येन्द्र विनाशनाय त्वन्माया मोहिते चित्त वृत्तिम मदोदतम भेलन भाजनम माम पितेव पुत्रम द्विपदे क्षमस्व प्रसीद देवे स जगन्निवास। ओम नमो गोवर्धनोद्धरणाय, गोविंदाय, गोकुल निवासाय, गोपालाय, गोपाल पतये, गोपी जन भर्त्रे, गिरिगजोद्धरते, करुणा निधये, जगन विधये, जगन मंगलाय, जगन निवासाय, जगन मोहनाय, कोटि मन्मथ मन्मथाय, वृषभानुसुतावराय, श्री नंदराज कुल प्रदीपाय, श्री कृष्णाय परिपूर्णतमाय, ते संघ ब्रह्मांड पतये, गोलोक धाम धिषणाधिपतये, स्वयं भगवते सबलाय नमस्ते नमस्ते। नारद जी कहते, इंद्र के द्वारा किए गए इस स्तोत्र का जो प्रातःकाल उठकर पाठ करेगा, उसे सब प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होंगी, उसे किसी संकट से भय नहीं होगा। इस प्रकार भगवान श्री हरि की स्तुति करके देवराज इंद्र ने हाथ जोड़कर समस्त देवताओं के साथ उन्हें प्रणाम किया। इसके बाद क्षीर सागर से उत्पन्न सुरभि गौ ने उस गोवर्धन पर्वत पर आकर अपने दूध की धारा से श्री कृष्ण को स्नान कराया। फिर ऐरावत ने गंगा जल से भरी हुई 4 सुणों द्वारा भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक किया। फिर हर्षोल्लास से भरे संपूर्ण देवता, गंधर्व और किन्नर ऋषियों को साथ लेकर वेद मंत्रों के उच्चारण पूर्वक पुष्पों की वर्षा करते हुए श्री हरि की स्तुति करने लगे। हे राजन, श्री कृष्ण का अभिषेक संपन्न हो जाने पर वो महान पर्वत गोवर्धन हर्ष और आनंद से द्रवीभूत होकर बहने लगा। हरि बोल। गोवर्धन पर्वत हर्ष से क्या हुआ? बहने लगा। तब भगवान ने प्रसन्न होकर अपना हाथ रखा कि मत बहो मत बहो। उस पर्वत पर भगवान के हाथ का वो चिन्ह आज भी दिखाई देता है। वो परम पवित्र तीर्थ हो गया जो मनुष्यों के पापों का नाश करने वाला, वही चरण चिन्ह भी है, उसे भी परम तीर्थ समझो। जहाँ हाथ का चिन्ह है, वहीं पर उतना ही बड़ा चरण चिन्ह बना हुआ है। उसी स्थान पर सुरभि देवी के चरण चिन्ह भी बन गए। श्री कृष्ण के स्नान के निमित्त जो आकाश गंगा का जल गिरा, उससे वहीं मानसी गंगा प्रकट हो गई। मानसी गंगा कैसे बनी है? आकाश गंगा का जल जो ऐरावत हाथी अपने सूंड से लाया था, वो संपूर्ण पापों का विनाश करने वाली है। सुरभि की दुग्ध धाराओं से गोविंद ने जो स्नान किया, उससे उस पर्वत पर गोविंद कुंड प्रकट हो गया, जो बड़े बड़े पापों को हर लेने वाला परम पवित्र तीर्थ है। कभी कभी उस तीर्थ के जल में दूध का सा स्वाद प्रकट होता है। उसमें स्नान करके मनुष्य साक्षात गोविंद के धाम को प्राप्त होता है। इस प्रकार वहां श्री हरि की परिक्रमा करके उन्हें प्रणाम पूर्वक पूजा समर्पित करने के पश्चात इंद्र आदि देवता जय जयकार पूर्वक पुष्प बरसाते हुए बड़े सुख से स्वर्ग लोक को लौट गए। हे राजन, जो श्री कृष्ण अभिषेक की इस कथा को सुनता है, सुना जिसने सुना वो सुने, जो श्री कृष्ण अभिषेक की इस कथा को सुनता है, वो 10 अश्वमेध यज्ञों के से भी अधिक पुण्यफल प्राप्त करता है। फिर वो परम विधाता परमेश्वर श्री कृष्ण के परम पद को प्राप्त होता है। कृष्णाभिषेकस्य कथां शृणोति यो दशाश्वमेधा वृताधिकं फलं प्राप्नोति राजेन्द्र स एव भूयसः परम पदं याति परस्य वेधसः। तो बड़ी सुंदर कथा हम लोगों ने सुनी। अब समय नहीं है, ठीक है। श्री गोवर्धन पूजा महामहोत्सव की, जगत गुरु शील प्रभुपाद की, श्री श्री राधा पार्थार्थी ललिता विशाखा गौर निताय सीताराम लक्ष्मण हनुमान प्रहलाद नृसिंह देव यशोदा दामोदर की, हरि बोल।